الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. جو كلاس بارتيسيپنٹس ہیں تو ان میں ایک مردانہ نام نظر آ رہا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ یہ خواتین کی کلاس ہے، اگرچہ کہ ابھی تو چلیں، یہ آج اس پڑھا رہا ہے، تو اگر کوئی مرد بھی سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد پھر خواتین نے پڑھانا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے خوف کا بس احساس دلاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو پلیز آپ خواتین کی کلاس لینے کی کوشش نہ کیجیے گا. جس طرح سے اگر آپ خاتون ہیں تو پھر جس طرح باقی خواتین اپنے ناموں سے آئی بھی ہیں، تو اسی طرح آپ کو بھی اپنے ناموں سے اپنے نام سے ہی آ جانا چاہیے. جہاں تک ناموں کی پوشیدہ رکھنے کا معاملہ ہے نا، تو اس میں ایک حد تک چلیں ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ بھی اپنا نام جو ہے وہ ایسے ہی کسی ایرے غیرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اچھا ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اس کو یعنی علماء ناپسندیدہ نہیں کہتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں. لیکن ہر چیز کا ایک مقام، ایک جگہ ہوتی ہے نا، کہ وہاں پہ یہ بات اچھی لگتی ہے، کہیں پہ یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. تو جہاں پر دینی علوم کا معاملہ ہو اور خصوصاً جو ہے وہ دین کی نسبت سے جہاں پہ بات ہو رہی ہو، تو اب وہاں پر اپنے نام کو چھپانا جو ہے نا، یہ اتنا مناسب نہیں لگتا ہے، خصوصاً جب کہ دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس معاملے میں پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی صحابیات کا نام کیا پتہ نہیں ہے کسی کو، ان سے زیادہ ہم بکوا والے تو نہیں بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ان کا نام سارے جہان کو پتہ ہے تو پھر ہمارے نام کو پتہ ہونے میں ایسا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ نہیں بھی بالکل آپ ادھر ادھر اپنے نام جو ہیں وہ پھیلاتے پھریں، اس طرح بھی نہیں کہا جا رہا، کیونکہ ہمارے علماء نے اس کی ایسی یعنی اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو دینی مواقع ہیں خصوصاً، تو ان کے اندر تقویٰ کا بھی ایک جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز اپنے مقام میں اچھی لگتی ہے. بہرحال اگر مرد ہیں تو پھر ان سے گزارش ہے کہ وہ اس تفسیر کلاس کے بعد پھر اس کلاس سے کوئٹ کر جائیں. اچھا، تو یہ جو دو آیات ہیں اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، تو ان کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے رمضان المبارک کے اندر، تو وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. پچھلی کلاس جو ہماری ہوئی تھی پیر کے دن، تو اس کے اندر ہم نے صرف سورۃ الفرقان کی شروع سے جو ہے وہ ایک سمری پڑھی تھی. تو اب جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ان آیات کے بارے میں بات شروع کریں گے، کیونکہ ان آیات کا بھی ترجمہ ہم نے دوبارہ سے پچھلی کلاس کے اندر ریپیٹ کر لیا تھا. اچھا، تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر جو ذکر کیا ہے اپنی تخلیقات کا، کہ آسمانوں اور زمین اور دن اور رات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یہ ہمارے آفاق میں پائے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی کریشن موجود ہے، تو یہ ان سے تعلق رکھتی ہے نا، یہ ہمارے اپنے انفس سے تعلق نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، ہمارے اپنی ذات سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہمارے ارد گرد کے ماحول سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس کے اوپر ڈسکشن ساری یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا. तो अब ये जो अंदर वाला मामला है, तो इसके ऊपर फिर एक लंबी डिस्कशन होती है कि जी अंदर से मुराद किस तरह से अंदर, कि आसमान गोया के, यानी जैसे आप लोग जो है वो फॉर एग्जाम्पल कोई पिज्ज़ा बनाते हैं, ठीक है, या कोई पाई बनाते हैं, ठीक है, या कोई इवन इस तरह की कोई या ब्रेड टाइप कोई चीज़ बनाते हैं, तो अब उस ब्रेड के अंदर आप कोई चीज इंसर्ट कर देते हैं, जैसे कि पिज्जा के अंदर होता है ना वो मीट पीसेस जो है वो पिज्जा के अंदर आपने यानी घुसा दिए, चिपका दिए उसके अंदर, या किसी ब्रेड के अंदर आपने जो है वो क्या कहते हैं उसको, चॉकलेट के जो पीसेस हैं वो आपने उसके अंदर पेवस्त कर दिए, ठीक है। तो क्या ये सितारे, चांद, सूरज, ये आसमानों के अंदर पैवस्त हुए हुए हैं या ये पैवस्त नहीं हुए हुए हैं? फी हा से क्या मुराद है? कि आसमानों के अंदर वो इस तरह से जिस तरह रोटी के अंदर कोई आप चीजें पैवस्त कर देती हैं, जैसे किशमिश वगैरह पैवस्त कर दी, या कोई ड्राई फ्रूट जो है वो पैवस्त कर दिया, उस तरह से पैवस्त हुई हुई है, या ये कि उनसे जुदा है और एक ये खला के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, खला में मौजूद है, स्पेस के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर इन्होंने एक लंबी फलसफियाना और साइंसी डिस्कशन भी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर नकल करी है, तो उसको हम पढ़ रहे थे। और इसको नकल करने की रीजन भी उन्होंने लिखी है कि चूंकि ये जो साइंसी तहकीकात हैं तो इनका इल्म जो है वो तो मुफस्सरीन को और मुहद्दिसीन को उमूमी तौर पर इनका इल्म तो नहीं होता ना, फलसफियाना तहकीकात का, साइंसी तहकीकात का, तो इस वजह से इन दोनों बातों को रिकनसाइल करना कि साइंस क्या कहती है या फलसफा क्या कहता है और कुरान क्या कहता है, इन दोनों के दरमियान कभी ऐसा भी होता है कि जाहिरी तौर पर कोई तजाद नजर आ रहा होता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही होती है, ठीक है। तो अब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे इस कॉन्ट्रडिक्शन को? क्या आप साइंस को रिजेक्ट कर देंगे और कुरान के अल्फाज को एज इट इज लेंगे, या आप नाउज बिल्ला कुरान को रिजेक्ट, तो ऑफ कोर्स कोई मुसलमान नहीं करेगा कुरान को, है ना, जब तक वो मुसलमान है तो वो कुरान को रिजेक्ट तो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकता है कि चूंकि कुरान के जो अल्फाज हैं वो साइंसी मुशाहिदे या फलसफियाना तहकीकात से मैच नहीं कर रहे, तो अब एक मुसलमान ये जरूर कर सकता है, ये जरूर से मुराद ये मुमकिन है उससे ये बात करना कि वो कुरान के जो मानी हैं उनकी किसी ना किसी तरीके से तावील करना शुरू कर दे, किसी तरीके से ना उसको ऐसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दे कि जिससे कि साइंस के साथ जो उसका तजाद है वो खत्म हो जाए, ठीक है। क्या आपकी आवाज हल्की आ रही है? अरे सॉरी, अभी मैंने अपना स्पीकर आवाज के तेज करने का क्या हम कह सकते हैं, इसके सेटिंग्स के अंदर मैं जा करके देखता हूँ कि अगर कोई माइक्रोफोन का लेवल इंक्रीज करने का तरीका है। ऑडियो सेटिंग्स, माइक्रोफोन, अच्छा नहीं, हेडफोन इस लैपटॉप का चल नहीं रहा है, तो अभी मैंने माइक का जो लेवल है वो फुल पे कर दिया है, तो उम्मीद है कि अब फर्क पड़ा होगा कुछ, ठीक है। तो वो कुरान के मानी में ना कुछ तावील करे, जिसको कि हम अंग्रेजी जुबान में कह सकते हैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन करे, ठीक, एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से दे कि ये तजाद साइंस के साथ खत्म हो जाए, ठीक है। तो क्या ये जायज है, क्या ये नाजायज है, ये डिस्कशन चल रही है, ठीक, कुरान के मानी में इस नियत से तावील करना, इस वजह से तावील करना कि वो साइंस के मुताबिक हो जाए, क्या ये जायज है, ये क्या ये नाजायज है, ठीक है। तो उसको फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 492 के ऊपर, अच्छा थोड़ा सा और बैकग्राउंड देना पड़ेगा, स्पेशली जो नए लोग हैं उनके लिए, कि जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ठीक है ना, या बहुत ही एंशंट फिलोसोफर्स थे, उनमें से दो नामों का यहाँ पे मेन तस्करा आ रहा है। एक है पाइथागोरस, ठीक है, जिसको फीसागोरस कहते हैं अरबी में और उर्दू में, फीसागोरस, और दूसरा था बेथलेमूस, ठीक है, जिसको के इंग्लिश में टोलमी कहते हैं, क्लॉडियस टोलमी, ठीक है। तो टोलमी का क्या 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 नजरिया था कि आसमान जो है ना वो एक जैसे रोटी की मानिंद है, और सितारे और सैयारे आसमान के अंदर पैवस्त हुए हुए हैं, जैसे कि आपने कोई ड्राई फ्रूट के टुकड़े या चॉकलेट के टुकड़े जो है वो अपने किसी ब्रेड के अंदर पैवस्त कर दिए। ये टोलमी का नजरिया था, बेथलीमूस, ओके। और पाइथागोरस का क्या नजरिया था? पाइथागोरस का नजरिया ये था कि सैयारे और सितारे जो हैं वो आसमानों के अंदर पैवस्त नहीं हुए हुए हैं, बल्कि ये किसी ओपन स्पेस में है, खुली जगह पर है, जिसको हम खला भी कहते हैं, ये खला के अंदर है, ठीक है ना, और ये जो है ना ये मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हिल रहे हैं, ये चल रहे हैं। ये था पाइथागोरस का नजरिया, ठीक है। तो जो यानी जिस जमाने में इन ग्रीक फिलोसोफर्स के जो किताबें थीं वो अरबी के अंदर ट्रांसलेट की गई ना, जिस जमाने में, ये कौन सा जमाना था? ये सल्तनत अब्बासिया का जमाना था ना, जिसमें के हारून रशीद का बेटा होता था मामून रशीद। तो मामून रशीद का मेनली ये जमाना था जिसके अंदर के ना ये बहुत ज्यादा ट्रांसलेशंस की गई थी अरबी के अंदर। तो उस जमाने के जो मुफस्सरीन थे ना, जिन्होंने कुरान की तफसीरें लिखी हैं, ठीक है, तो उस जमाने के कुछ मुफस्सरीन जो हैं तो वो जो है वो बतलमूसी नजरिए से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए थे, बतलमूसी नजरिए से। बतलमूसी नजरिया क्या था कि ये पैवस्त हुए हुए आसमानों के अंदर, ठीक है। तो चूंकि वो उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए थे, तो फिर उन्होंने जो है ना वो कुरान की तफसीर के अंदर तावीलात करनी शुरू कर दी, एक्सप्लेनेशंस करनी शुरू कर दी कि बस जी कुरान के अंदर जो है ना ये चीज ठीक, ये इस चीज का मतलब ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है, ठीक है। जबकि हर एक ने ऐसा नहीं किया, हर मुफस्सिर ने ऐसा नहीं किया। तो यही उन्होंने लिखा था कि इससे मालूम हुआ, पेज नंबर 492 पे पढ़ रहा हूँ दोबारा से, कि इससे मालूम हुआ कि कदीम मुफस्सरीन में से बाज लोग जो फलकियात के मुतालिक, यानी एस्ट्रोनॉमी, फलकियात का मतलब एस्ट्रोनॉमी के मुतालिक बतलमूसी नजरिए के मोतकिद थे, उन्होंने उन आयात कुरानी में तावीलात से काम लिया जिनसे बतलमूसी नजरिए के खिलाफ कोई चीज समझी जाती थी, ठीक है, यानी समझ में आती थी कि कोई चीज ऐसी है जो कि बतलमूसी नजरिए से रिकनसाइल नहीं कर रही है, ठीक है। तो उन आयात में इन्होंने तावील करनी शुरू कर दी। इसी तरह आज के बाज मुसन्निफीन जिन आयात को जदीद हयत के नजरियात से मुख्तलिफ समझते हैं, आज के मुसन्निफीन से इनकी क्या मुराद है? मेनली जो है ना ये एक इसमें एक बड़ा नाम जो है वो सर सैयद अहमद खान का आता है, ठीक है। तो उनको जो है वो आज के मुसन्निफीन से ताबीर किया, नाम नहीं लिखा है उन्होंने उनका, लेकिन वो एक बड़ा नाम इंडिया पाकिस्तान के एतबार से आता है, और भी हैं उनके अलावा ऐसे लोग। तो उन्होंने भी क्या किया कि जिन आयात को जदीद हैयत के नजरियात से मुख्तलिफ समझते हैं, उनमें तावीलात करके उसके मुताबिक बनाने की फिक्र करते हैं। ये दोनों सूरतें दुरुस्त नहीं, ठीक है। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहे हो तो आप पूछ भी सकते हैं, हो सकते हैं दोबारा समझाने से आप और आपके सवाल का जवाब देने से आपको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो पूछने में फिर कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत ही ज्यादा यानी एम्बेरस फील कर रहे हो पूछना, तो उसका तरीका ये है कि फिर आप नीचे जो चैट विंडो होती है, तो चैट विंडो के ऊपर टू लिखा होता है ना, टू के सामने आप एवरी वन अगर लिखा हुआ है तो उसको चेंज करके इस आर्टिस्ट का नाम सेलेक्ट कर लें, तो उससे ये होगा कि आप जो चैट में टाइप करके एंटर करेंगे ना तो वो प्राइवेटली जो है वो सिर्फ मुझे नजर आएगा और किसी को नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका नाम जो है वो यानी छुपा रहेगा कि आपने इस ये वाला सवाल किया, ठीक। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा सवाल भी है जिसमें कि आपको झिझक महसूस हो रही है कि दूसरे लोग पहचानेंगे तो क्या कहेंगे, कि इसको इतनी बात समझ में नहीं आई, तो आप प्राइवेटली सर सवाल लिख के भेज सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहरहाल, तो ये दो कहते हैं कि ये दोनों सूरतें दुरुस्त नहीं है, सलफ सालिहीन के तरीके के खिलाफ और काबिल तरदीद है, ठीक है ना, इन्हें ये नहीं रद्द कर दिए जाने के काबिल हैं, ये रिजेक्ट कर दिए जाने के काबिल हैं ये दोनों सूरतें। अलबत्ता वाकई वाकया यही है, यानी हकीकत यही है, वाकया यही है कि इस वक्त तक हय्यत जदीद ने जो नई तहकीकात पेश की हैं उनमें आसमानों के इनकार के सिवा कोई भी कुरान सुन्नत के खिलाफ नहीं है। बाज लोग अपने कसूर इल्म से उनको कुरान या सुन्नत के खिलाफ समझकर तावीलात के दर बैर हो जाते हैं, यानी खामखा तावीलात के पीछे पड़ जाते हैं हालांकि उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये साइंस तहकीकात जो है ये कुरान सुन्नत के खिलाफ है ही नहीं, सिवाय एक बात के कुरान सुन्नत जो है वो आसमानों का जो नजरिया पेश करता है, सात आसमानों का, तो वो चूंकि रूहानी चीज है, एक कंप्लीटली रूहानी चीज है, उसका मटेरियल वर्ल्ड से, फिजिकल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, ठीक है। तो इस वजह से जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस तो फिर अब उसको नहीं समझ सकती ना, क्योंकि उसका तो रूहानियत से ताल्लुक नहीं होता। बहरहाल, उसके अलावा बाकी चीजें जो है वो कोई मॉडर्न साइंस के अंदर खिलाफ नहीं है कुरान सुन्नत के। जमाने हाल के सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तफसीर रूहुल मआनी उलमाए सलफ की तफासीर का बेहतरीन खुलासा और अरबो अजम मशरक व मगरब में मकबूल व मुस्तनद तफसीर है, ठीक है, यानी ये जो बड़ी तफासीर मौजूद है ना इस उम्मत के अंदर, तो उनमें से तफसीर रूहुल मआनी एक बहुत अहम नाम है, ठीक है। और उसके लिखने वाले कौन है, हजरत अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बगदाद में रहते थे, ठीक है। तो जमाने हाल से ये क्या मुराद दे रहे हैं, ये अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह चंद 100 साल पहले ये दुनिया से गुजरे हैं, ठीक है ना, यानी ये 20वीं सदी के मुफस्सिर नहीं है, ना ये 19वीं सदी के मुताबिक मुफस्सिर है, बल्कि ये कम अज कम जो है ना 500-600 साल पुराने मुफस्सिर है, लेकिन उनको भी जमाने हाल से ताबीर दे रहे हैं, ठीक है। यानी ये बिल्कुल 1400 साल पहले के या 1200 साल पहले के नहीं है, बल्कि समझ लें कि ये दरमियानी पीरियड के हैं। आज से यानी अगर आप 1400 साल से लेके आज तक का जो पीरियड है उसका हाफ करें तो उसके बाद के ये जिनको मुअख्खरीन में भी शुमार किया जाता है, ठीक है ना, द वंस हु केम लेटर, ठीक है ना, बाद में आने वाले लोगों में इनका शुमार किया जाता है, अगरचे कि ये बिल्कुल हमारे जमाने के नहीं है, लेकिन इनकी तफसीर बहुत ही ज्यादा मकबूल और मुस्तनद तफसीर है। तो मौसूफ जिस तरह कुरान और सुन्नत के मुतबहर आलिम है, इसी तरह फलसफा वहायत कदीम व जदीद के भी बड़े आलिम हैं। उन्होंने अपनी तफसीर में तहकीकात फलसफिया के मुताल यही उसूल करार दिया है जो ऊपर जिक्र किया गया है, और उनके पोते अल्लामा सैयद महमूद शकरी आलूसी ने इन मसाइल पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है, मा दल्ला अलैहिल कुरान मिम्मा यउद्दु यउद्दुल हय्यतुल जदीदतिल कवीमा कवीमतिल बुरहान, ठीक है, उम्मीद है मैंने सही पढ़ा है, इसका नाम काफी लंबा चौड़ा है, एक ही किताब का नाम है, ठीक है, यानी कि जिसमें हय्यत जदीदा के नज़रियात की तायीद कुरान करीम की रोशनी में की गई है, मगर दूसरे तजद्दुद पसंद उलमा की तरह पुरानी आयात में किसी किस्म की तावील को रवा नहीं रखा है, ठीक है। तो यानी इनके पोते ने भी ये किताब लिखी है इन्हीं इसी तरह के मसाइल में कि हय्यत जदीदा जो है ना वो कुरान उनके ऊपर कैसे दलालत करता है, ये बेसिकली इस किताब का मौजू है। तो उसमें उन्होंने इन सारे मसाइल के ऊपर तहकीक लिखी है, लेकिन इन्होंने कुरान की तावील को रवानी रखा, जहां पे उसकी जरूरत नहीं पेश आती उसको तावील नहीं किया है। तो उनके चंद जुमले इस जगह नकल कर देना काफी है जो हय्यत जदीदा की ताईद में उन्होंने लिखे हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने हय्यत जदीदा, ठीक है ना, यानी जो मॉडर्न मॉडर्न मटीरियल साइंसेस है, ठीक है, तो हय्यत जदीदा के बहुत से कवायद को देखा है, वो कुरान और सुन्नत की नुसूस के खिलाफ नहीं है, ठीक है, जो नस साबित होती है कुरान और हदीस से, तो ये जो मॉडर्न साइंसेज हैं ये उसके खिलाफ नहीं है, और इसके बावजूद अगर वो कुरान और सुन्नत की किसी नस के खिलाफ हो तो हम उसकी तरफ रुख नहीं करेंगे, यानी हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे अगर वो खिलाफ हो तो, और कुरान और सुन्नत की नुसूस में उसकी वजह से हम तावील नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी तावील सलफ सालिहीन के मजहब मनकूल मजहब मकबूल में नहीं है। यानी सहाबा ने ऐसी तावील नहीं करी, ताबईन ने और तबा ताबईन ने ऐसी तावीलें नहीं करी हैं कि कुरान के मानी को जो है वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फिट करने की कोशिश की हो, ऐसा सलफ सालिहीन में से किसी ने नहीं किया है, तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे। तो हम करेंगे फिर क्या? तो हम ये करेंगे कि हम इस वक्त ये कहेंगे कि जो नज़रिया कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, इसी में कोई खलल है, इसी में कोई खराबी है, उस नज़रिए में कोई खराबी है, क्योंकि अक्ले सलीम और नकले सही में कभी इख्तलाफ नहीं होता, बल्कि ये एक दूसरे की ताईद करते हैं। ठीक है, आखिर में उसूल बयान कर रहे हैं कि अकले सलीम किस चीज को कहते हैं? इंसान को अल्लाह ताला ने एक अकल दी है, ये हमारी रूह का हिस्सा है, ठीक है ना, ये एक रूहानी चीज है जो कि हमारे पास मौजूद होती है, इसको अकल कहते हैं, ठीक है ना, यानी ये एक सलाहियत है, ये किसी जिस्म के हिस्से का नाम नहीं है। ठीक है, हम लोग हम यूजली ना दिमाग को अकल कहना शुरू कर देते हैं, हालांकि दिमाग जो है ये जिस्म के एक हिस्से को कहते हैं, एक टुकड़े को, एक बॉडी ऑर्गन को कहते हैं दिमाग, ब्रेन, ठीक है, लेकिन ब्रेन इज नॉट इक्वल टू अकल, ठीक है, क्योंकि ब्रेन जो है ये ब्रेन तो जानवरों के अंदर भी होता है, ये तो डायनासोर के अंदर भी होता था, और ये तो चिड़िया में भी होता है, और हर चीज के अंदर ब्रेन होता है, राइट, लेकिन क्या उनके पास अकल भी होती है? नहीं, अकल तो हर एक के अंदर नहीं होती ना, या अगर होती भी है तो बहुत ही कम होती है, बहुत ही महदूद दर्जे की होती है, लेकिन ब्रेन का मतलब अकल नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इवन इंसान भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ब्रेन होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो मजनून है, पागल दीवाने हैं, तो क्या हम उनको अकलमंद कहेंगे? हालांकि उनके दिमाग अगर आप सर्जिकली खोलें तो आपको पूरा का पूरा उसके अंदर, यानी पूरा का पूरा ब्रेन नजर आएगा, अगर उनकी खोपड़ी को खोलें, स्कल को खोलें, है ना, तो ब्रेन तो मौजूद है लेकिन वो अकलमंद तो नहीं है ना। ठीक है, तो अकल जो है ना, ये एक फैकल्टी, एक सलाहियत का नाम है कि जो कि हमारे रूहानी वजूद का हिस्सा होती है। ठीक है, हाँ, अगर आप ये अलबत्ता कह सकते हैं कि किसी का ब्रेन जो है वो आप निकाल दें उसके अंदर से, ठीक है, तो अब तो उसकी मौत भी वैसी हो जाएगी, वैसी भी मौत वाकई हो जाएगी ना, तो अब ब्रेन के बगैर जो है वो अकल का तस्वर भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है इन जिस्मानी हिस्सों का, कुछ ना कुछ जो है ना वो हमारी रूह के साथ ताल्लुक जरूर होता है, लेकिन रूहानी चीजें जो होती है ना वो यानी दोनों, ये दोनों एक नहीं होती हैं। ठीक है, तो अकले सलीम किस चीज को कहते हैं? कि जिस शख्स के पास अल्लाह ताला ने जो ये सलाहियत दी है अकल की, तो वो इस अकल वाली सलाहियत को वैसे ही इस्तेमाल करे कि जैसे कि उसका परवरदिगार चाहता है इस्तेमाल, ठीक है ना, जब कोई इंसान अपने अकल को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है ना, तो उसको अकले सलीम कहते हैं। ठीक है, एक ये एक डेफिनेशन है अकले सलीम, ठीक है ना, लेकिन चूंकि अभी मॉडर्न साइंसेस की बात हो रही है, तो इस डेफिनेशन को हमें थोड़ा सा और वसी करना पड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमने अकले सलीम की सिर्फ यही डेफिनेशन रखी है, तो ये तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक कामिल मोमिन के ऊपर अप्लाई होती है, कामिल मोमिन, क्योंकि वही अकले सलीम वाला हो सकता है, वही अल्लाह ताला की तमाम मर्जियों को फॉलो करता है, अल्लाह ताला की तमाम हुक्मों को पूरा करता है, तो अकले सलीम तो सिर्फ एक कामिल मोमिन के अंदर ही हो सकती है। ठीक है, लेकिन चूंकि मॉडर्न साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अकले सलीम की डेफिनेशन जो है ना वो ऐसे रखनी होगी कि जो जो मुशाहिदात किसी भी काफिर साइंसदान को भी मिल रहे हैं, किसी काफिर साइंसदान को भी ना, जो जो मुशाहिदात और तजुर्बात से बात समझ में आ रही है, तो वो उनके अंदर कोई झूठ शामिल ना करता, उनके अंदर कोई यानी उनको मैनिपुलेट करके जो है ना वो लोगों के सामने गलत तरीके से पेश ना करता, बल्कि जैसे उसको बात समझ में आ रही है वो इंतहाई इखलास के साथ और दयानतदारी के साथ उस बात को जो है वो आगे लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अकल सलीम ऐसे शख्स को भी कहा जा सकता है, ठीक है, कि जो कि अपने मुशाहदात और तजुर्बात के नतीजे में जो कुछ उसको समझ में आ रहा है वो कामिल दयानतदारी के साथ वो लोगों को बता रहा है, उसके अंदर कोई झूठ शामिल नहीं कर रहा, उसके अंदर किसी चीज को छुपा नहीं रहा लोगों से कि हाँ भाई मेरे मेरा जो दीन है, फॉर एग्जाम्पल वो साइंसदान जो है ना वो ईसाई हो, ठीक है ना, अब उसकी मुशाहदात और तजुर्बात से उसको कोई बात समझ में आ रही है, लेकिन वो लोगों को इसलिए नहीं बता रहा या अपनी रिपोर्ट्स के अंदर अपनी रिसर्च पेपर के अंदर उस बात को इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि जो ईसाइत के अकायद हैं उनसे वो मैच नहीं कर रही, ठीक है ना, तो ये बददियानती कहलाएगी, ठीक है ना, ये इल्मी बददियानती कहलाएगी, ये जो है वो साइंसी बददियानती भी कहलाएगी, तो ऐसा शख्स जो है ना वो अकल सलीम वाला नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अकल सलीम जो जो जिस नतीजे पे पहुंचती है ना, तो वो नतीजा जो है वो नकले सही से मैच करना जरूरी है, नकले सही से। नकले सही क्या क्या चीज होती है कि जो हमने अपने बड़ों से बातें सीखी हैं पक्की ऑथेंटिसिटी के साथ, ठीक है ना, यानी हमने जो जो अपने बड़ों से बातें सीखी हैं तो वो यानी बहुत ही ठोस दलाइल से ये बात साबित हो कि हाँ हमारे बड़ों ने यही बातें हमें बताई थी, ठीक है ना, तो उनको जो है ना वो नकले सही कहा जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ शुबा पैदा हो जाए कि नहीं पता नहीं बड़ों ने ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, क्या वाकई इन्हीं अल्फाज में ये बात बताई थी या किसी और अल्फाज में ये बात बताई थी, तो फिर उसको हम नकले सही नहीं कहेंगे, बल्कि उसके अंदर जो है ना वो कुछ जोफ पैदा हो गया है, कुछ उसके अंदर जोहल पैदा हो गया है, ठीक है ना। क्या मतलब, इसको समझने के लिए जैसे आप सब नहीं आजकल तो ये बात सुनी हुई होती है सही हदीस है, सही हदीस, ठीक है ना, तो सही हदीस को सही हदीस क्यों कहा जाता है कि यही बात जो कि इस हदीस के अंदर मौजूद है ये बात साबित हो चुकी है कि नबी अलैहिस्सलाम ही ने ये बात ऐसे ही फरमाई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात ऐसे ही फरमाई थी जैसे कि इस हदीस के अंदर लिखी हुई है, तो उस हदीस को सही हदीस कहते हैं, ठीक है ना। अगर कंफर्म हो जाए कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई थी तो वो सही हदीस हो जाती है, उसको सही हदीस कहना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ इस कंफर्मेशन के अंदर कुछ कमी हो कि नहीं 100% कंफर्म हम नहीं कह सकते इस बात को कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात ऐसे ही फरमाई थी, हम 100% यकीन के साथ ये बात नहीं कह सकते, बल्कि हम 80% यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई थी, ठीक है ना। तो अब ये जो हदीस है ये सही हदीस तो नहीं कहलाएगी ना, अब ये जईफ हदीस कहलाएगी क्योंकि इसके अंदर 20% जोफ पैदा हो चुका है, ठीक है ना। जो रेज हैंड कर रही है तो वो अगर कोई सवाल पूछना चाहती है तो यहाँ पर लिख करके सवाल कर लें, इंशाल्लाह पढ़ करके फिर जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा जोफ पैदा हो गया कि नहीं पता नहीं ये जो हदीस में बात लिखी हुई है नबी अलैहिस्सलाम ने एग्जैक्टली ऐसे फरमाई थी कि नहीं फरमाई थी, तो ये सही हदीस अब ये नहीं कहलाएगी बल्कि अब ये ज़ईफ़ हदीस कहलाएगी, ठीक है। तो नकले सही का मतलब क्या है कि जो बात ऊपर से नकल होके हमारे तक पहुंच रही है, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने ऐसे फरमाया है, ठीक है, या नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे फरमाया है, तो अगर वो कंफर्म है 100% तो फिर उसको कहेंगे कि ये सही हदीस है, ये सही, ये नकले सही है, ठीक है। तो नकले सही के अंदर जो बातें मौजूद है वो अकले सलीम के लिए लाजमी है कि वो उन्हीं बातों तक पहुंचे, ठीक है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई अकले सलीम इस्तेमाल करे और फिर भी वो जो है ना वो नकले सही के खिलाफ नतीजा अखज कर ले, ठीक है ना, फिर भी उसका कंक्लूजन जो है वो नकले सही के खिलाफ निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं हजरत यहाँ पर, ठीक है, कि अकल सलीम और नकल सही में कभी इख्तिलाफ नहीं होता है बल्कि ये एक दूसरे की ताईद करते हैं। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि नकल सलीम सॉरी नकल सही ने जो बात बताई है
ठीक है ना, नकले सही ने जो बात बताई है, अकले सलीम अभी वहां तक पहुंची नहीं है, अभी वहां तक पहुंची नहीं है, बल्कि अभी रास्ते में है, ठीक है ना, अभी तहकीकात चल रही है, अभी तहकीकात उसकी मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक मुकम्मल तहकीकात नहीं हुई है, इस वजह से अभी भी इसके जो कंक्लूजन निकल रहे हैं वो नकले सही से कंप्लीटली मैच नहीं कर रहे, नकले सही से अभी कंप्लीटली मैच नहीं कर रहे, लेकिन जब इसकी तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी तब जो भी इसका कंक्लूजन होगा वो नकले सही से मैच कर जाएगा, लेकिन अभी तो तहकीकात मुकम्मल ही नहीं हुई है ना। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर साहब, कोई जैसे कोई नहीं, कोई कोई फिजिसिस्ट, फिजिक्स के कोई 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 एक्सपर्ट, ठीक है, फिजिक्स के एक्सपर्ट साहब ने जो है ना वो कोई अपना एक बहुत ही यानी एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद जो है ना उन्होंने अपनी कोई थ्योरी लिखी, ठीक है ना। अब एक साहब जो है वो फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन अभी वो इब्तदाई तालिबे इल्म है फिजिक्स के, ठीक है ना, इब्तदाई तालिबे इल्म है फिजिक्स से, तो अभी इब्तदाई तालिबे इल्मी के अंदर जो वो फिजिक्स की चीजें पढ़ रहे हैं और थोड़ी बहुत तजुर्बे कर रहे हैं और थोड़ी बहुत मुशाहदे वगैरह कर रहे हैं, तो अब उनके जो कंक्लूजन निकल रहे हैं वो उन पीएचडी डॉक्टर साहब के कंक्लूजन से अभी मैच नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि पीएचडी साहब वाले जो कंक्लूजन हैं तो वो तो बहुत ही हाई लेवल के, बहुत ही एडवांस्ड रिसर्च के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाले, लेकिन ये जो साहब है ना ये तो अभी तालिबे इल्मी के दौर के अंदर है, तो अभी जो ये नतीजे निकाल रहे हैं ये नतीजे जो है ना वो यानी उन साहब के नतीजों से मैच नहीं कर रहे, लेकिन वजह उसकी खाली ये है कि अभी तो ये इब्तदाई दर्जे के अंदर है ना, ठीक है ना, अभी तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत करके जब वो उस लेवल पे पहुंचेंगे तब इनके कंक्लूजन और उन डॉक्टर साहब के कंक्लूजन मैच कर जाएंगे, लेकिन अभी तो ये उस नतीजे तक अभी तो ये इतने एडवांस हो ही नहीं है, तो इस वजह से मिसमैच मौजूद है, ठीक है। तो ये जरूर हो सकता है कि अकल सलीम जो है ना वो अभी रास्ते में है, वो अभी तक जो है ना वो उसकी तहकीक मुकम्मल ही नहीं हुई, तो चूंकि अभी तक तहकीक मुकम्मल नहीं हुई है तो जाहिर है कि इसके जो नतीजे हैं वो नकले सही के बताई हुई बातों से मैच नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो ये तो कोई इतनी समझ में आने वाली बात नहीं होनी चाहिए। किसी ने सवाल लिखा है कि अकल सलीम इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट दोबारा समझा दें, अकले सलीम इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अकले सलीम इसी तरह से इसी तरह से समझेंगे कि कोई साइंटिस्ट है, बेशक अभी बेशक वो ईमान वाला नहीं है, ठीक है ना, वो मुसलमान नहीं है, ईमान वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो तहकीकात कर रहा है ना है तो वो काफिर, यानी वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाता तो इस वजह से वो काफिर कहलाएगा, ठीक है, लेकिन जो भी वो तहकीकात करता है ना तो वो उन तहकीकात में कोई रद्दो बदल नहीं करता, छुपाता नहीं है अपनी तहकीकात को, बल्कि जैसी उसको बातें समझ में आ रही हैं वो एग्जैक्टली वैसी ही बातें जो है ना वो अपनी रिसर्च पेपर के अंदर लिखता है, अपने रिसर्च पेपर में लिखता है, ठीक है ना, यानी जिसको कहते हैं ना एक दयानतदार किस्म का इंसान, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे साइंसदान हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे मुराद यानी आप उंगलियों पे शायद काउंट कर सकते हो, दर्जनों के हिसाब से ऐसे साइंसदान आप कह सकते हैं, ठीक है ना, लाखों में नहीं है दर्जनों में है, ठीक है, कि जो के अपनी तहकीकात करते 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 बिलाखिर ईमान लेकर के आ गए, मुसलमान हो गए, ठीक है ना, तो वो मुसलमान कैसे हो गए, अपनी साइंसी तहकीकात के नतीजे में वो मुसलमान कैसे हो गए, ठीक है, क्यों, इसलिए कि जब वो काफिर थे उस जमाने में भी वो जो साइंसी तहकीकात कर रहे थे ना तो वो उनके साथ इंतहाई सच्चाई वाला मामला कर रहे थे, दयानत वाला मामला कर रहे थे, ठीक है ना, वो यानी हकीकत तक वाकई पहुंचने की जस्तजू के साथ वो तहकीकात कर रहे थे, ठीक है, कि वो जो भी हकीकत मुझे समझ में आएगी मैं उसको कबूल कर लूंगा, ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जब हकीकत मेरे सामने खुल के आ जाएगी ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा बल्कि मैं उसको कबूल कर लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे साइंसदान जो होते हैं ना उनको कहा जाएगा कि ये अकल सलीम वाले साइंसदान है, ठीक है। तो वो लोग फिर अल्टीमेटली वो ईमान लेकर के आ जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। मॉरिस बुखाइल जैसे, जैसे एक बड़ा मशहूर नाम है कि जो कि अपनी तहकीकात करने के बाद जो है वो मुसलमान हो गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं कि खुलासा कलाम ये है कि फलकियात और सितारों, सैयारों की हरकत और हयात के मुताल्लिक बहस व तहकीक कोई नया फन नहीं है। क्या हम कहें कि जी ये तो 20वीं सदी की इजादात है, तो फिर जो पुराने मुफस्सरीन थे तो उस जमाने में तो तहकीकात भी होती नहीं थी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सारी की सारी डेवलपमेंट्स तो इस दौर के अंदर जाकर क्यों हुई है, तो ये फरमा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हजारों साल पहले से इन मसाइल पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। मिस्र, शाम, हिंद, चीन, ये चार बड़े बड़े नाम आते हैं। इजिप्ट और पूरा का पूरा ये जो सीरिया का इलाका है, इसके अंदर भी जो है वो, यानी सीरिया के इलाके से यहाँ पर मुराद है जो ग्रीक, यानी जो 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 ट्रेडिशन है, ठीक है। क्योंकि ग्रीस, ग्रीक जो है वो, यानी ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, रोम और ग्रीस, ये दो अलग अलग मुल्क हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो मुल्क है ये बेसिकली शाम के ही बराबर में है, मेडिटेरेनियन ओशन के राइट साइड पे सीरिया का इलाका है, और इसके नॉर्थ के ऊपर रोम है और ग्रीस है, ठीक है। तो जो सीरिया का इलाका था ना, अगरचे कि वो अलग है और रोम और ग्रीस अलग मुल्क हैं, लेकिन रोम और ग्रीस की सिविलाइजेशन जो है ना वो जब फैलनी शुरू हुई थी तो उसका कब्जा सीरिया के ऊपर भी हो गया था, सीरिया पर भी उसका कब्जा हो गया था, ठीक है। जब भी आप जॉर्डन में जाएंगे या सीरिया के जो मॉडर्न कंट्री है उसके अंदर जाएंगे ना, तो आपको ग्रीक सिविलाइजेशन के बहुत सारे आसार उधर मिलेंगे, ठीक है ना। बड़े बड़े वो जो पेट्रा के उनके जो पैलेसेस होते थे और वहां पर जो उनके स्टेडियम्स होते थे, वो सारे के सारे किधर है, वो जॉर्डन के अंदर है या सीरिया के अंदर है, ठीक है। तो अगरचे के रोम और ग्रीस मुल्क तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनका कब्जा जो है ना वो पूरा का पूरा सीरिया के ऊपर भी हुआ हुआ था। तो इन्होंने यहाँ पर रोम और ग्रीस का नाम लिखने के बजाय शाम का नाम लिख दिया है, क्योंकि वो सब एक ही चीज थी असल, ठीक है ना। तो मिस्र एक हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एक अलग सिविलाइजेशन थी, और ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन एक अलग सिविलाइजेशन थी जिसका के तसल्लुत शाम के एरिया के ऊपर भी था, और इंडियन सिविलाइजेशन ये बिल्कुल एक अलग सिविलाइजेशन थी, ठीक है। साउथ बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, जिसके अंदर कि ये आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब का सब एक ही था, और चाइना, चाइना एक अलग ही दुनिया है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इन जगहों पर फनून, इन फनून का चर्चा कदीम जमाने से चला आ रहा है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले इस फन का बड़ा मुअल्लिम फीसागोरस गुजरा है, पाइथागोरस, जो इटालिया के मदरसे क्रोटोना में, इटालिया, इटली जिसको आज कहते हैं, ठीक है। तो असल में तो मुल्क अब तो इटली मुल्क है ना, रोम तो अब खाली उसका एक एक शहर बनकर रह गया है, ठीक है। लेकिन पहले तो पूरा का पूरा ही रोम कहलाता था, ठीक है। तो इटालिया के मदरसे क्रोटोना, ये कोरोना का जो लफ्ज है ये कहाँ से आया, ये इटली के एक जगह का नाम है एक्चुअली, कोरोना, ठीक है, एक टाउन है इटली के अंदर कोरोना। तो इसी तरह से एक मदरसा भी था जिसका नाम क्रोटोना था, तो क्रोटोना में वो बाकायदा इसकी तालीम दिया करता था। इसके बाद मीलाद मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 140 साल पहले इस फन का दूसरा मुहक्किक बेथलेमूस रूमी आया, जिसका ताल्लुक रोम के इलाके से था, और इसी जमाने में एक दूसरे फिलोसोफर हेरखोस की शोहरत हुई, जिसने जाविये नापने के आलात इजाद किए, ठीक है ना, जिससे कि जाविये एंगल्स को मेजर किया जाता था, उसने ये इन आलात को भी इजाद किया। अब ये हेयर होस का जो इंग्लिश नाम है वो मैं देख नहीं सका, तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। फीसागोरस और बेथलेमोस के नजरियात हैयत अफलाक के मुताबिक बिल्कुल एक दूसरे से मुतजाद थे, बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट थे। बेथलेमोस को अपने जमाने की हुकूमत और आवाम का तआवुन हासिल हुआ, उसका नजरिया इतना फैला कि फीसागोरस का नजरिया गोशाए गुमनामी में जा पड़ा, क्योंकि फीसागोरस तो, पाइथागोरस तो वैसे भी 500 साल यानी बेतलेमूस से 350 साल पुराना था ना, ठीक है ना, 350 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस के नजरिया जो है ना, वो एक तो पुराने भी हो चुके थे और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी उसको हासिल नहीं था, जबकि बेतलेमूस को जो है वो दोनों चीजें हासिल थी कि ये मॉडर्न भी था और इसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था। तो इसका नजरिया इतना फैला कि पाइथागोरस का नजरिया वो शायद गुमनामी में जा पड़ा। और जब यूनानी फलसफे का अरबी जुबान में तर्जुमा हुआ, इसके बारे में पिछली क्लास में हम तफसील से बात कर चुके हैं कि क्यों तर्जुमा हुआ था, राइट, तो जब अरबी जुबान में तर्जुमा हुआ तो यही बेतलेमूस का नजरिया इन किताबों में मुंतकिल हुआ। यानी अरबी किताबों में जो डोमिनेंट नजरिया मुंतकिल हुआ ना, वो बेतलेमूस का नजरिया था। और अहले इल्म में आमतौर से यही नजरिया जाना पहचाना गया, यानी मुसलमान अहले इल्म के दरमियान इसी बात यानी यही नजरिया जाना पहचाना गया। बहुत से मुफस्सरीन ने आयात कुरानिया की तफसीर में भी यही नजरिया सामने रखकर कलाम किया, ठीक है। 11वीं सदी हिजरी और 15वीं सदी ईस्वी, ठीक है, 11वीं सदी हिजरी यानी नबी अलैहि सलाम को गुजरे हुए जब 1100 साल हो चुके थे, ठीक है, और वो 15वीं सदी हिजरी बनती है, यानी 1600s, हमारे जो अब का कैलेंडर है, ये हम 2020 में हमें तो यानी हम 20 में हैं, तो जब 1600s, हम तो 20s के अंदर हैं, तो 1600s का जो जमाना था ना, उसमें यूरोपी अकवाम यूरोप की तरक्की का आगाज हुआ। वेस्टर्न यूरोप यानी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सबसे बड़े बड़े ये नाम थे, स्पेन और इटली भी सोर्ट ऑफ इसके अंदर शामिल हो जाता है। वैसे तो इटली तो सदर्न यूरोप के अंदर आता है, लेकिन फिर भी तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीन सबसे बड़े बड़े नाम होते हैं, और स्पेन भी। तो यूरोप की तरक्की का आगाज हुआ और यूरोपियन मुहक्किकीन ने इन मसाइल पर काम करना शुरू किया, जिनमें सबसे पहले कोपरनिक, जिसको कोपरनिकस लिखते हैं अंग्रेजी के अंदर, तो कोपरनिकस, फिर जर्मनी में कीलर, ये मेन कीलर लग रहा है लेकिन वो शायद प्रिंटिंग के अंदर इनसे गलती हो गई है, जर्मनी में, ये नून गुन्ना है, जर्मनी में कीलर, ठीक है, KIELER या KEILER अंग्रेजी में इसको लिखते हैं, तो जर्मनी में कीलर था और इटालिया में गैलीलियो, गैलीलियो का नाम तो हमने भी बचपन से सुना है, वगैरह के नाम आते हैं। उन्होंने असर नौ इन मबाहिस का, इन बहसों का जायजा लिया। ये सब इस पर मुत्तफिक हो गए कि हैयत अफलाक के मुतालिक बेतलेमूसी नजरिया गलत और पाइथागोरस का नजरिया सही है, ठीक है ना। या मॉडर्न जो 1600s के अंदर जो रिसर्च हुई, तो उसके मुताबिक पाइथागोरस का जो है ना, वो नजरिया इनको ज्यादा सही समझ में आया। 18वीं सदी ईस्वी यानी 1900s और 13वीं सदी हिजरी यानी आज से 100 साल या 200 साल पहले, हिजरी में इसहाक न्यूटन की शोहरत हुई। इसहाक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका नाम आइजक न्यूटन है और आइजक जो है वो इसहाक ही का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। तो उसकी तहकीकात व इजादात ने उसको मजीद तकवीयत पहुंचाई, ठीक है ना। ये 1900s का बंदा था आइजक न्यूटन। उसने ये तहकीक की कि वजनी चीजें अगर हवा में छोड़ी जाएं तो उनके जमीन पर आ गिरने का सबब वो नहीं जो बेतलेमूसी नजरिए में बताया गया है कि जमीन के वस्त में मरकज आलम है। अच्छा, बेतलेमूसी नजरिया जो था ना, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसने एक बात करी थी, ठीक है। वो क्या थी कि हवा में कोई चीज होती है तो वो जो है ना, यानी जमीन की तरफ खिंचती है, ठीक है, जमीन की तरफ खिंचती है, ठीक है ना। जैसे आप कोई चीज, जैसे एप्पल को उठा करके ऊपर उछालें, बॉल को ऊपर उछालें, तो ये बॉल ऊपर तो नहीं चली जाती बल्कि बॉल तो वापस नीचे आती है, ठीक है ना। तो क्यों नीचे आती है जमीन की तरफ? तो उसने इसकी वजह ये बयान करी थी कि जो जमीन है ना, वो मरकज़े आलम है, मरकज़े आलम है, ठीक है ना, यानी सेंट्रल लोकेशन है ये आलम की, और तमाम वजनी चीजें मरकज की तरफ फितरतन रुजू करती हैं, ठीक है। हमारे हजरत ने एक मिसरा एक जमाने में काफी कहा करते थे,
ठीक है ना, आज से कोई 15 साल पुरानी बात है, कि कुल्लू शैइन यरजिउ इला असली, ठीक है ना। ये अरबी का जाहिर एक मकूला है, लेकिन हजरत वो कुछ खास कॉन्टेक्स्ट में इसको अक्सर दोहराया करते थे। कुल्लू शैइन, हर चीज, यरजिउ इला असली, वो अपने असल की तरफ लौटती है। हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, ठीक है। तो अब वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता था कि जी अगर आप ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आपने घूम फिर करके वापस पाकिस्तान ही आना, ठीक है ना। अगर आपका ताल्लुक जो है वो किसी और जगह से है, यानी बाकायदा नस्बी ताल्लुक जिसको कहते हैं ना, यानी कि आप यानी किसी सफर वफर की वजह से जो है ना वो आप कहीं जा करके पैदा हो गए रास्ते में, है ना, किसी जगह पैदा हो गए, तो अब वो आपकी असल हो गई। असल तो माँ बाप की ताल्लुक से बनती है, ठीक है ना। तो जहाँ से भी आपकी असल है ना, तो इवेंचुअली आपने असल की तरफ ही लौटना है, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें जो है वो हमारे जो जिस्म है, ठीक है ना, हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने इस खाक से बनाया है, मिट्टी से बनाया है, तो पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। ये भी है ना, उर्दू जुबान का भी एक मुहावरा है, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, ठीक है। तो हम मरने के बाद जो है वो फिर वही जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं, हमारा जिस्म, ठीक है। तो ये भी ना गोया कि उसी तरह की इसने बात करी थी कि हर चीज जो है ना वो फितरतन मरकज की तरफ रुजू करती है, ठीक है। तो ये वजह है कि चीजें जो है ना वो नीचे गिरती हैं, जमीन की तरफ गिरती हैं, ठीक है। बल्कि उसने बताया, आगे मजीद कहते हैं कि बल्कि उसने बताया कि जितने सितारे और सैयारात हैं सब में एक जज्ब व कशिश का मादा है। नहीं, सॉरी, ये तो आगे में बढ़ गया। तो बतलेमूस ने कहा कि हर चीज जो है ना वो यानी ये हर चीज जो है ना वो अपने मरकज की तरफ फितरतन रुजू करती है, ठीक है। अब इसकी इस अगरचे कि ये इसकी जो बात है ये बहुत गलत लगती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक दर्जा हकीकत इसके अंदर भी है, ठीक है ना। एक दर्जा अगर हम अपने दीनी उलूम को सामने रखें, ठीक है ना, तो एक दर्जा हकीकत इसके अंदर भी नजर आती है। यानी ये भी कोई बेवकूफ और बिल्कुल ही पागल दीवाना तो नहीं था, ठीक है ना। इसने भी बहुत सोच समझ करके ये नतीजा खस किया था, ठीक है ना। तो अब इसमें गलती उससे हो गई, या हो सकता है कि नतीजा अखज करने में गलती नहीं हुई होगी इससे, लेकिन जो इसने नतीजा अखज किया उस नतीजे को प्रेजेंट करने में उससे गलती हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये भी बिल्कुल नई बातें होती हैं, तो आप या तो आपने किसी बात को समझने में ही गलती कर दी, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि समझने में आपने इतनी गलती ना करी हो, लेकिन उसको बयान करने में आपने गलती कर दी हो, क्योंकि कामिल समझ अभी आपको आई नहीं है। तो आपको बयान करने का सही तरीका, जैसे कि हम अक्सर होते हैं ना, हमारे साथ भी होता है कि जी हमारे दिल के अंदर बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के जज्बात होते हैं, ख्यालात होते हैं, और हमें पक्का पता होता है कि हम बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन जुबान से हम उनको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, अगले बंदे को कन्विंस नहीं कर पा रहे होते, ऐसा बहुत होता है। खुसूसन खवातीन के साथ तो और भी होता होगा, जब कभी ससुराल वगैरह के अंदर मसले होते हैं तो कहते हैं हाँ जी वो हम बस बस अगले बंदे को कन्विंस नहीं कर पा रहे, वरना तो मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ उस मामले कि मैं ही ठीक हूँ, है ना। लेकिन बंदे को किसी को ना तो अपने शौहर को कन्विंस कर पाती है, ना किसी और को कन्विंस कर पाती है। तो ऐसा लगता है कि बतलेमूस ने भी जो है ना वो कुछ ना कुछ तो उसके सिरा हाथ में आ गया था, ठीक है ना, लेकिन उसने एक्सप्रेस जो है वो सही तरीके से इसको नहीं किया। सिरा क्या हाथ में आया था कि देखें किस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि बार बार क्या तस्कर आता है, समावाती वल अर्ध, ठीक है ना, यानी आसमान तो बहुत सारे हैं, 7 आसमान, ठीक है, और जमीन जो है वो एक ही है, एक ही जमीन है, ठीक है ना। अब ये एक जमीन जो है, इस एक जमीन के अंदर ही अल्लाह ताला ने, यानी बिल्कुल रूहानी अंदाज से भी अगर इस बात को देखें तो इसी एक जमीन के अंदर ही अल्लाह ताला ने अपना काबतुल्ला भी रखा हुआ है, ठीक है ना। इसी एक ही जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को भी रखा हुआ है ना। रोज़े रसूल किधर है? रोज़े रसूल किसी आसमान के ऊपर है, रोज़े रसूल किसी अर्श के ऊपर भी नहीं है, है ना, ये तो इसी जमीन के अंदर है ना। और काबतुल्ला किधर है? इसी जमीन के अंदर है ना। तो जो
दो सबसे अहम चीजें हैं, ठीक है ना, हमारी, यानी एक तो खालिक हो गया ना अल्लाह ताला, अल्लाह ताला तो भाई खालिक है, ठीक है ना, लेकिन मखलूक के अंदर अगर हम देखें तो मखलूक में सबसे अहम चीज कौन है? नबी अलैहिस्सलाम, है ना, किसी को शुबा इसके ऊपर? ठीक है ना, सबसे अहम चीज तो नबी अलैहिस्सलाम है। और फिर जो खालिक ने जो अपना घर पसंद किया है वो क्या है? काबतुल्ला है। और ये दोनों चीजें किधर है? ये दोनों चीजें जो है ना तो जन्नत में है ना ये किसी और जगह है, ये तो इस जमीन के अंदर है ना। हाँ, ये और बात है कि जमीन के ऊपर वाले एरिया के अंदर है, क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा दीन भी यही बात कहता है कि ये जमीन जो है ना ये मरकज है, ये जमीन मरकज है। तो बतलमूस साहब ने जो है ना वो सोच विचार कर करके, सोच विचार कर करके पहुंचे वो भी उधर ही, जो कि कुरान और हदीस हमें बताती है, ठीक है ना। लेकिन उन साहब को चूंकि कुरान और हदीस की रोशनी में तो उन्होंने ये बातों को नहीं सोचा था ना, उन्होंने तो अपनी अकल को इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, और इखलास के साथ इस्तेमाल किया था, और यानी दयानतदारी के साथ उन्होंने इस बात को आगे एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन चूंकि उनकी तहकीक मुकम्मल नहीं हो पाई थी, बतलमूस साहब की तहकीक कामिल नहीं हो पाई थी, इस वजह से ना वो एक्सप्रेस उसको गलत तरीके से कर गए, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस साहब जो है तो उन्होंने जो है ना इसको दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है ना, उन्होंने मरकज शरकज का कोई तस्करा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उन्होंने एक दूसरी हकीकत जो है वो बयान कर दिया आगे, ठीक है। वो क्या हकीकत बयान करी? उसने बताया कि जमीन पर गिरने का सबब वो नहीं है जो बतलमूसी नजरिया है, बल्कि उसने बताया कि जितने सितारे और सैयारात हैं सब में एक जज्बा व कशिश का मादा है, ठीक है ना, जिसको ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। जमीन भी इसी तरह का एक सैयारा है, उसमें भी कशिश है, ग्रेविटी है। जिस हद तक जमीन की कशिश का असर रहता है वहां से हर वजनी चीज जमीन पर आएगी, लेकिन अगर कोई चीज उसकी कशिश के दायरे से बाहर निकल जाए तो फिर वो जमीन की तरफ नहीं आएगी, यानी नीचे नहीं आएगी, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल पुल जहां तक इफेक्ट करता है वहां तक तो वो चीजें जमीन की तरफ आएंगी, जब वो इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए तो फिर अब वो जमीन की तरफ नहीं आएंगी, ठीक है। क्या लिखा है अब आपने? बतलेमूस शायद एस्ट्रोनॉमी है, सितारों का इल्म, बतालेमूस सितारों का, भाई ये तो एक बंदे का नाम है, ठीक है, अब उस बंदे के नाम की वजह से किसी इल्म का भी नाम पड़ जाओ तो और बात है, लेकिन हाँ ये सारी बातें जो है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, फल्कियात का तर्जुमा सारी एस्ट्रोनॉमी से ही किया था, ठीक है। तो अब ये पाइथागोरस का नजरिया था। अब आगे कहते हैं कि हाल में रूसी और अमरीकी माहिरीन ने कदीम इस्लामी फिलोसोफर अबू रैहान अल बैरूनी का नाम सबने सुना होगा, तो इन्होंने अलबैरूनी की तहकीकात की इमदाद से रॉकेट वगैरह ईजाद करके उसका अमली तजुर्बा और मुशाहिदा कर लिया। व्हाट्सएप के ऊपर फोन तो वैसे भी नहीं चलता, मेरे बार बार फोन तो अलबेरूनी की तहकीकात की इमदाद से रॉकेट वगैरह ईजाद करके उसका अमली तजुर्बा मुशाहिदा कर लिया कि रॉकेट जब अपनी शदीद कुव्वत और तेज रफ्तारी के सबब जमीन की कशिश को तोड़कर उसके दायरे से बाहर निकल गया, रॉकेट जब अपनी शदीद कुव्वत यानी जो जेट इंजन होता है उस जेट इंजन के जरिए से रॉकेट के अंदर जो कुव्वत पैदा होती है तो उससे और तेज रफ्तारी यानी उससे फिर वो बहुत तेजी के साथ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो उसके सबब जमीन की कशिश को तोड़कर उसके दायरे से जब बाहर निकल गया तो फिर ये नीचे नहीं आता, ठीक है, बल्कि एक मस्नूई सैयारे की सूरत अख्तियार कर लेता है और अपने मदार पर चक्कर लगाता है, ठीक है ना, यानी ये एक क्या बन जाता है, ये एक सैटेलाइट बन जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना वो जमीन की तरफ गिरता नहीं है, बल्कि ये जमीन के गिर जो है ना वो चक्कर काटना शुरू हो जाता है, जिसको सैटेलाइट भी कहा जाता है। फिर इन मस्नूई सैयारों का तजुर्बा करते करते उसके माहिरीन ने सैयारात तक पहुंचने की तदबीरें शुरू की और बिल आखिर चांद पर पहुंच गए। चांद भी तो एक सैयारा ही है ना एक्चुअली, ठीक है ना। यानी चांद भी क्या है, ये जमीन के गिर चक्कर काट रहा होता है, ये जमीन के अंदर आके गिर नहीं जाता, ठीक है। तो ये बिल आखिर चांद पर पहुंच गए, जिसकी तस्दीक उस जमाने के तमाम माहिरीन फन मवाफिक को मुखालिफ ने की, ठीक है। यानी किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये चांद पे पहुंचे ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई नहीं हुआ है चांद पे पहुंचने का, इन्होंने जो है ना वो एक जैसे कि आजकल कोई कहे कि भी कोरोना है ही नहीं, ठीक है ना, कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं है, ये तो सबका सब जो है वो ड्रामा है, ठीक है। तो अब उसको क्या कहा जाएगा कि भाई बीमारी तो ये है। अब इसके अंदर झूठ को कितना शामिल किया गया है, कितना सच है, कितना एग्जैक्ट है, कितना नहीं है, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन आप सिरे से इनकार कर देंगे नहीं जी ये तो है ही नहीं, ठीक है ना, हर बंदा ही झूठ बोल रहा है, हर चीज ही झूठ बोल रही है, हर चीज, तो भाई अब ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से ना चांद पे पहुंचने वाला जो मामला है, तो अब उसके बारे में कोई कहना शुरू कर दे नहीं ये चांद चांद पे पहुंचा ही नहीं है, ये तो हॉलीवुड के किसी स्टूडियो के अंदर इन्होंने एक वीडियो बना ली थी कि जी चांद टाइप की कोई चीज है उसके ऊपर लोग उतर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ना फरमा रहे हैं कि सब ने जो है ना इसकी तायद करी थी कि हाँ वाकई चांद पर पहुंच गए हैं, और अब तक चांद पर बार बार जाने, वहां के पत्थर खाक वगैरह लाने और इसके फोटो मुहैया करने का सिलसिला जारी है। दूसरे सैयारात तक पहुंचने की भी कोशिशें हो रही हैं और खला नवर्दी खलाए खला पैमाई की मशकें जारी हैं। बाकी जो है वो स्पेस क्राफ्ट वगैरह, Voyager 1, Voyager 2, ये सारे जो है ना वो इनके ऊपर तहकीकात चल रही है, मतलब ये अब तो बन चुके हैं और बहुत आगे आगे तक जा चुके हैं। तो ये किस तरह से हुआ कि बेसिकली उन्होंने एक रॉकेट बना करके ना वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर निकल गए और फिर वो यानी अब वो जमीन की तरफ वो चीजें नहीं गिरती हैं। अब बहरहाल वो एक इसकी तफसील है कि वो जमीन की तरफ गिरती गिरती तो वो अभी भी है, अभी भी जमीन के गिर्द क्यों चक्कर काट रही है, वो जाकर के चांद के गिर्द चक्कर काटना क्यों नहीं शुरू हो जाती, या सूरज के गिर्द या मार्स के गिर्द चक्कर काटने क्यों नहीं शुरू हो जाती। भाई वो अभी भी जमीन के ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट होता है, लेकिन वो जमीन से इतनी दूर चली जाती हैं कि अब ना उनके ऊपर जो उनके पीछे चीजें हैं उनका भी कुछ ना कुछ असर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल वो यानी बीच में एक तरीके से वो मुअल्लक रहती हैं, वो यानी वो ना इधर गिरती हैं ना पीछे की तरफ जाकर गिरती हैं। एनीवे तो आगे कहते हैं कि इनमें से अमरीकी खलानवर्द यानी जो एस्ट्रोनोमर कहते हैं, अमेरिकन एस्ट्रोनोमर जॉन ग्लेन, जो कामयाबी के साथ खला का सफर करके वापस आया और इसकी कामयाबी पर उसके मवाफिक व मुखालिफ सभी ने एतमाद किया कि वाकई जॉन ग्लेन जो है ना वो चांद तक होकर के वापस आया है, उसका एक बयान अमेरिका के मशहूर माहनामा रीडर्स डाइजेस्ट में और उसका उर्दू तर्जुमा अमेरिका के उर्दू माहनामे सैरबीन में मुफस्सल छाया हुआ है। तो सैरबीन कोई अमेरिका में माहनामा होता होगा, मंथली डाइजेस्ट, तो उसके अंदर इसका तर्जुमा भी छाया हुआ। यहाँ इसके अहम इक्तिबासात माहिरी माहनामा सैरबीन से नकल किए जाते हैं, जिनसे हमारे जेरे बहस मसले पर काफी रोशनी पड़ती है। जॉन ग्लेन ने अपने तवील मकाले में खला के अजायब को बयान करते हुए लिखा है कि यही वो एक वाहिद शय है जो खला में खुदा के वजूद पर दलालत करती है, और यह कि कोई ताकत है जो इन सब को मरकज व महवर से वाबस्ता रखती है। आगे लिखता है कि इसके बावजूद खला में पहले ही से जो अमल जारी है उसको देखते हुए हमारी कोशिशें इंतहाई हकीर हैं। साइंसी इस्तराहात व पैना व पैमानों में खलाई पैमाइश नामुमकिन है, ठीक है। यानी उसने जाकर के जो खला को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, जमीन से थोड़ा ही बाहर निकला था ना अभी वो, तो उसको देख करके खाली ये कह रहा है कि खला इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह है और इतने बड़े बड़े वहां पर यानी जिस्म मौजूद हैं कि हम दुनिया के अंदर ऐसे आलात और इस्तलाहात बना ही नहीं सकते कि हम उनको मेजर कर सकें, इन डिस्टेंसेस को मेजर कर सकें, इन साइजेस को मेजर कर सकें, इतने बड़े बड़े साइजेस हैं ये। तो वहां पे जाकर के ना हम इंतहाई हकीर रखते हैं, और वहां पर यानी एक इवन ऐसा शख्स जो कि शायद ये एथियस था या नहीं था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कह रहा है कि वहां पर ना, यानी ये बस एक एक एक, एक किसी एक ताकत की तरफ निशानदेही करती है कि ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो कैसे अपने मदार के अंदर चल रही हैं और ये डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, जैसा कि कुरान कुरान के अंदर अल्लाह ने ऐसा तस्वीर बहुत पहले किया हुआ है, बस ये अच्छा, ये बस ये इसके जो लिखी हुई चीज है इसको बस पढ़ करके फिर ये वाली क्लास खत्म करते हैं ताकि आपकी हदीस क्लास शुरू हो। आगे हवाई जहाज की मशीनी कुव्वत का तस्करा करके लिखा है कि लेकिन एक यकीनी और गैर महसूस कुव्वत के बगैर इसका इस्तेमाल भी महदूद और बेमानी होकर रह जाता है, इसलिए कि जहाज को अपने मकसद की तकमील के लिए तायीन रुख की हाजत होती है और ये काम कुतुब नुमा से लिया जाता है। वो कुव्वत जो कुतुब नुमा को मुतहर्रक रखती है हमारे तमाम हवास खमसा के लिए एक खुला चैलेंज है। उसे ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, हालांकि नताइज का जहूर इस पर वाजह दलालत कर रहा होता है कि यहाँ कोई पोशीदा कुव्वत जरूर मौजूद है। कुतुब नुमा नॉर्थ पोल, ठीक है, बल्कि कुतुब नॉर्थ पोल को कहते हैं ना, ठीक है, और नुमा से मुराद जो है वो चीजें जो कि नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करती है, ठीक है, जिसको कि हम मैग्नेट भी कहते हैं। तो मैग्नेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी जिसको हम एक्चुअली मैग्नेट नहीं, कॉम्पस कहते हैं, कॉम्पस, ठीक है। तो कॉम्पस जो होते हैं वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन की तरफ वो उनका उनका रुख होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है उनका रुख नॉर्थ पोल की तरफ, क्या वो चीज है जो कि हर कॉम्पस को जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ पुल करके रखती है, ठीक है ना। अब उस चीज को जो है ना, यानी ये कोई फिजिकल चीज हमें नहीं नजर आती, ये एक एनर्जी है, ये क्या है ये कि जो कि हर चीज को जो है वो अपनी तरफ खींच के रखती है। तो ये एक यानी हमारे फाइव सेंसेस के लिए ये एक खुला चैलेंज है कि हम इस चीज को परसीव नहीं कर सकते अपने इन फाइव सेंसेस के जरिए से। हाँ, छठी हिस्स जो है वो एक अलग चीज है, तो वो फाइव सेंसेस का तो हिस्सा नहीं है ना। बहरहाल कोई पोशीदा कुव्वत जरूर मौजूद है। आगे सब सैरो सफर के नतीजे के तौर पर लिखता है, यानी चांद का सफर करके वापस आ गया। और ये जो एस्ट्रोनोमर्स होते हैं ये खाली ऐसे नहीं होते हैं कि जी बस इनको जहाज उड़ाना आ गया और फिर उनको स्पेस क्राफ्ट में बिठाया और चांद तक पहुंचा दिया, बस ये जहाज के पायलट नहीं होते हैं खाली, ये जो एस्ट्रोनोमर्स होते हैं ना ये खुद बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने खुद जो है ना वो बहुत कुछ जो है वो स्टडीज की हुई होती हैं और उन्होंने जो है वो तजुर्बात वगैरह बहुत कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो अपना ये सफर का हाल बयान कर रहा है ना, तो ये सिर्फ एक सफर नहीं है इसके लिए, बल्कि इसकी अपनी अपनी तहकीकात का भी ये नतीजा है जो कि इसने बतौर साइंटिस्ट खुद भी किए थे। तो कहता है कि ईसाइयत के उसूल और नजरियात की हकीकत भी ठीक यही कुछ है, अगर हम उनको अपना रहनुमा बनाएं तो बावजूद है कि हमारे हवास उनके इदराक से आजिज होते हैं, लेकिन इस रहनुमा कुव्वत के नताइज व तासुरात अपने और अपने दूसरे भाइयों की जिंदगियों में खुली आंखों देखेंगे। यही वजह है कि हम जानते हैं और इस बिना पर कहते हैं कि इस कायनात में एक रहनुमा कुव्वत मौजूद है। तो इससे तो वैसे ही बात साबित हो रही है कि ये एक अच्छा खासा बिलीविंग क्रिश्चियन था, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी की सवाय इसके कि वो अल्लाह ताला का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी का अल्लाह ताला के बारे में तस्वुर है वो तो वही है ना जो कि हमारा तस्वुर है अल्लाह ताला के बारे में, ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है वो खालिक कायनात है, ठीक है, और असल तो अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला ही ने ये सारी जो चीज़ों को यानी चलाया हुआ है, ठीक है। तो यानी इसका भी जो है ना वो बेसिकली एंड रिजल्ट जो है वो यही एंड कंक्लूजन यही निकला था कि भाई अल्लाह ताला ही की जात है कि जो कि इन सारे सारे मामलों को जो है वो चला रही होती है, चाहे वो यानी हमारे अनफुस के अंदर हो, ठीक है ना। जैसे इसने लिखा है ना कि अपने और अपने दूसरे भाइयों की जिंदगियों में खुली आंखों देखते हैं, तो यहाँ पे इससे क्या मुराद है, अनफुसी जो हमारे अपनी जातों के अंदर जो निशानियां मौजूद हैं अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करने वाली, ठीक है ना, वो यहाँ पर मुराद है। और जो आफाकी निशानियां हैं कि जो कि सितारों और सैयारों के निजाम के अंदर हमें नजर आती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ ही पॉइंट करने वाली होती हैं। ये हैं खला के मुसाफिरों और सैयारात पर कुमंद फेंकने वालों की कमाई के हासिलात। ठीक है, जो आपने अमरीकी खला नवर्त के बयान में पढ़ ली कि इस तमाम तगोदौ के नतीजे में राज़े कायनात और उसकी हकीकत तक रसाई तो क्या होती, बेहद बेहिसाब सैयारात व नजूम की गर्दिशों का इदराक होकर और हैरानी बढ़ गई। ठीक है ना, यानी बात क्या कर रहा है कि कोई ना कोई है, बस इतनी बात कर रहा है, तो हैरानी बढ़ गई ना इसकी। ठीक है, साइंसी आलात से इनकी पैमाइश के नामुमकिन होने और अपनी सब कोशिशों की इसके मुकाबले में हकारत का इकरार व एतराफ करना पड़ा। बस हासिल इतनी बात हुई कि ये सब निज़ाम कायनात और नजूम व सैयारात खुद ब खुद नहीं बल्कि किसी अजीम और गैर महसूस ताकत के ज़ेर फरमान चल रहे हैं। यही वो बात है जिसको अम्बिया अलैहिस्सलाम ने पहले कदम पर आम इंसानों को बता दिया था। यानी ये इतनी तफसीलात में पढ़ने के बावजूद जो है ना वो हैरान के हैरान रहे हैं। ठीक है, लेकिन अम्बिया ने ये सारी तफसीलात जो है वो यानी बिल्कुल ही जिनको के पढ़ना लिखना भी नहीं आता था जिन्हों उनको ये सारी तफसीलात जो है वो पहले कदम के ऊपर ही बता दी। और कुरान करीम की बेशुमार आयात में इसी चीज़ का यकीन दिलाने के लिए आसमान व ज़मीन नजूम व सैयारात वगैरह के हालात पर गौर व फिक्र करने की तलकीन की गई है। आपने देख लिया कि जिस तरह ज़मीन में बैठकर आसमानी फ़जाओं और नजूम व सैयारात की तहकीकात व तैयार पर फलसफियाना बहसें करने वाले इन चीज़ों की हकीकत तक ना पहुँच सके और बिल आखिर अपने इज्ज़ व बेबसी का एतराफ़ किया, इसी तरह ये ज़मीन से लाखों मील ऊपर का सफ़र करने वाले और चांद के पत्थर और मिट्टी और वहाँ के फ़ोटो लाने वाले भी हकीकत शनासी के मैदान में कुछ इससे आगे ना बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पे वैसे हमने किताब ख़त्म करनी है, लेकिन कह क्या रहे हैं ये कि जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने तो कोई ट्रैवल किया ही नहीं था, ना तो उन्होंने एयर ट्रैवल किया क्योंकि हवाई जहाज भी नहीं बने थे, ना उन्होंने स्पेस ट्रैवल किया, कुछ भी नहीं। राइट, वो तो अपने घरों में बैठ करके या अपनी किसी जो भी उनकी लेबोरेटरी होती थी उस जमाने में उसमें बैठ करके सोचते रहते थे, देखते रहते थे। तो राइट, तो उन्होंने जो नजरियात अखज किए बतलमूस हो या पाइथागोरस हो या और लोग हों, ठीक है ना, तो वो नजरियात जो उन्होंने घर बैठे बैठे जमीन में बैठे बैठे जो उन्होंने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे, है ना, ये जॉन ग्लेन जैसे लोग जो हैं ये चांद से होकर के वापस आ गए, ये भी बेसिकली उतनी नजरियात तक पहुंचे। ठीक है ना, उतने ही उनके पास भी यानी ये सारी जो 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 हकीकत की पहचान है वो जॉन ग्लेन की कंक्लूजन और पाइथागोरस के कंक्लूजन में कोई खास फर्क नहीं। ठीक है ना, तो अब कहने का मकसद ये है कि फिर इसका फायदा क्या हुआ। ठीक है ना, अब फायदा जो है ना वो हम जो के मरऊब होते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, जो मरऊब होते हैं इन मॉडर्न डिस्कवरीज से, तो हम फिर इसको हम फायदा जो है ना फिर निकालते हैं, यानी हम फायदा जो है ना फिर वो इन्वेंट करते हैं। ठीक है, कि फायदा ये है कि देखो देखो ये ऑनलाइन क्लास हो रही है ना, है ना, ये दीन की तालीम कर रहे हैं ना, तो ये दीन की तालीम कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, ये तो उसी वक्त हो रही है ना क्योंकि इतनी सारी साइंसी तहकीकात हुई हैं, इन्होंने करी हैं, तभी तो हम जूम के ऊपर बैठ करके कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं, तो ये एक फायदा है ना, ये फायदा बन गया भी है ना कि भाई अगर ना ना तो वो चांद पर जाते, ना तो वो सैयारात बनाते, और ना जो है वो जूम के ऊपर तफसीर की क्लास होती है ना, तो ये जो है ना ये कौन ये इस फायदे को कौन बयान करता है, ये हमारे जैसे मुसलमान बयान करते हैं। ठीक है ना, कि भाई चूंकि हम जूम के अंदर बैठ करके कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये जितनी इन्होंने तहकीकात करी है ना ये जस्टिफाइड, ये बिल्कुल सही करी है, क्योंकि अगर वो ना करते तो हम इस तरह से कुरान की तफसीर नहीं पढ़ सकते। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो हमने कंक्लूजन निकाला है ना, क्योंकि हम में से बहुत सारी हमारी आंटियां, हमारी खालाएं, हमारे फुप्पियां इसी इसी कंक्लूजन में पहुंचती हैं। ठीक है, इसी कंक्लूजन में पहुंचती हैं, लेकिन इसका जवाब क्या है, इसका जवाब ये है कि जो आपको फायदा नजर आ रहा है ना, ठीक है ना, तो ये जो फायदा आपको नजर आ रहा है ना कि जूम के ऊपर बैठ करके कुरान की तफसीर पढ़ने के काबिल हो, ठीक है ना, ये फायदा जो है ना ये नजरों का धोखा है। ये फायदा क्या है? ये नजरों का धोखा है, ठीक है? क्यों? इसलिए कि ये अगर तो फायदा है भी, पहली बात तो ये फायदा है नहीं, ठीक है ना? ये आजिज जो है ना, इसको तो फायदे के अंदर इसको कबूल ही नहीं करता, ठीक है ना? और इसकी वजूहात है क्यों नहीं कबूल करता, ठीक है ना? चले, अगर आपको खुश करने के लिए इसको बतौर फायदा हमने मान भी लिया, ठीक है, तो फिर भी इस छोटे से फायदे के पीछे जितने नुकसानात हैं इस टेक्नोलॉजी के, इस रिसर्च के, इस एडवांसमेंट के जितने नुकसानात हैं ना, अगर उन नुकसानात को हम देखना शुरू कर दें ना, तो ये जो फायदा है ना कि जूम पे बैठ के इतनी सारी खवातीन जो है वो तफसीर की क्लास ले रही हैं, ये फिर इस फायदे की हैसियत नहीं रहती, क्योंकि नुकसान इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उनके सामने ये फायदा जो है ना, फिर उसकी हैसियत ही खत्म हो जाती है, पहली बात, ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि इतना भी तो सोचे ना कि ये जूम पे बैठ करके तफसीर की क्लास पढ़ने की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है आप, है ना? ये तरीका तो नहीं था तफसीर पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, ये तरीका तो नहीं था कि जूम के ऊपर बैठ करके जो है इस तरह से कुरान पढ़ा जाए, ठीक है ना? इसके ये तो असातिज़ा इकराम के पास, जिसको कहते हैं ना, जो क्या कहते हैं, जानुए तलम्मुस तय करना है, जिस तरह से असातिज़ा इकराम की सोहबत में जा करके उनके पास जिस तरीके से कुरान पढ़ने का वो जो फयूज और बरकत होती हैं उसकी, उसके जो फायदे होते हैं वो तो आपको नहीं मिल रहे हैं ना। अब आप में से कौन जो है वो पता नहीं वजू की हालत में भी बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, कौन जो है वो पता नहीं घर के अंदर क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई सुन भी रहा है नहीं सुन रहा है, किसी की तवज्जो भी है नहीं बन रही है, ऐसे बस बैठे हुए हैं, या तो मैं बोले चला जा रहा हूँ, वो अपने घर के कोई और काम करे चले जा रही है, ठीक है ना? या वो किसी और से बातचीत चल रही है, या बिल्कुल ही जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर किसी के साथ मैसेजिंग चल रही है, ठीक है ना? तो ये तो तफसीर क्लास करने का ये तो तरीका नहीं है ना, ठीक है ना? तो ये जो तफसीर क्लास हम कर रहे हैं तो ये तो इंतहाई मजबूरी की हालत में कर रहे हैं इस तरीके से तफसीर क्लास, वरना ये तरीका नहीं है तफसीर की क्लास करने का, ठीक है ना? ये तो कुछ नहीं है इस वजह से ये करना पड़ रहा है, वरना ये कोई असल तरीका को थोड़ी है दीन दीनी उलूम को हासिल करने का, ठीक है ना? तो अब ये मजबूरी की हालत में अगर आप किसी तरीके को इस्तेमाल करने के अलावा आपके पास कोई और चारा ही ना रहे, तो अब उस तरीके को जो है ना वो आप वजह बना करके जो है ना वो हजारों नुकसानात को भी जस्टिफाई करना शुरू कर दें, या उनको जो है वो भुला दें, उनको जो है वो नजरों से ओझल कर दें। हजारों नुकसानात को आपने नजरों से ओझल कर दिया, और जो एक इतना सा टाइनी सा जो एक फायदा आपको नजर आ रहा है, आप उस एक टाइनी से फायदे की वजह से जो है ना वो किसी चीज को जस्टिफाई करना शुरू कर दें, तो ये तो बेवकूफी कहलाएगी ना, खाली बेवकूफी कहलाएगी ना, ठीक है? तो इस वजह से ना ये बस हम मजबूरी के हालत में ये सारे जो है ना ये फायदे तो बेशक जो भी कहें इसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें एक असल हकीकत समझने की जरूरत है कि इंसान ने जो है ना वो चूंकि अपने रब को नहीं माना, ठीक है, अल्लाह के रसूल को नहीं माना ना, तो अब ना मान करके उसने जितनी भी साइंसी तहकीकात करी है ना, ये सारी की सारी जो है ना वो उसको असलन नुकसान पहुंचा रही होती है, असलन नुकसान पहुंचा रही होती है, बाय इट्स वेरी नेचर वो इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं, फायदेमंद नहीं होती। तो अब ये जो इन्होंने इतनी सारी तहकीकात करी है, मिसाल के तौर पर, बस आखिरी बात करके आज खत्म करेगा, ये जो इतनी सारी स्पेस के अंदर इन्होंने रिसर्चेस करी है, तो इसका ये कर क्या रहे, इससे इन्होंने क्या क्या फायदा क्या दिया है इंसानियत को, ठीक है ना? फायदा इंसानियत की, एक तो सेहतें बिल्कुल बर्बाद करके रख दी, इंसानी हेल्थ जो है ना वो बर्बाद करके रख दी है, ठीक है ना? और फिर दूसरी चीज इन्होंने क्या करी है, इन्होंने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाए, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना? ताकि बड़ी तादाद में इंसानों को जो है ना वो एकदम मौत के घाट उतारा जा सके, मौत के घाट उतारा जा सके, ठीक है ना? ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल ये क्या होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो बनाए गए हैं, ये सैयारा जो सिस्टम है ना कि जो ऊपर चला जाता है फिर बाद में जो है वो चक्कर काटना शुरू हो जाता है, राइट? यही तो बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम है, ठीक है ना, जिसके जरिए से एक कॉन्टिनेंट के अंदर बैठा हुआ जो है ना वो एक बटन दबाता है और उधर से जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर होता है तो वो दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जाता है और वहां पर हजारों की तादाद में इंसानों को एकदम से मौत के घाट उतार, ठीक है ना। तो ये जो साइंसी तहकीकात हैं इनसे दो जो हम सो कॉल्ड फायदे हासिल हुए हैं ना, बड़े बड़े दो सो कॉल्ड फायदे, एक तो इंसानों की सेहत बर्बाद होकर के रह गई है, ठीक है, और दूसरी चीज ये कि इसके जरिए से सिर्फ इंसानों को मारने के तरीके इन्होंने इस्तेमाल इन्होंने इजाद किए, मारने के तरीके, राइट, ना तो सेहतमंद करने के तरीके इजाद किए और ना जो है ना वो जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके इजाद किए, ठीक है ना। तो हम मुसलमान जो है ना जो कि मरूब हैं बेसिकली इनकी इन साइंसी तहकीकात से और इनकी अंग्रेजी की जुबान से, और तो हम जो है ना वो फिर जस्टिफाई करने की कोशिशों में हर वक्त लगे रहते हैं ना कि भाई अगर ना होती तहकीकात तो फिर जूम के ऊपर तफसीर की क्लास कैसे करते। अल्लाह के बंदे को अकल को इस्तेमाल करने की जरूरत है, अल्लाह ताला ने अकल दी होती है ना तो उसके कदरदानी ये है इस नेमत की कि उस अकल को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना, इन बातों को समझने के लिए। तो अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें अपनी अकल को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, तब इन उलूम का हमें फायदा होगा, वरना फिर इन उलूम को खाली पढ़ लेने से जो है ना वो फिर फायदे की बजाय जो है फिर उल्टा हमारे खिलाफ ये बातें हुज्जत बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हम तफसीर की क्लास खत्म करते हैं, इंशाल्लाह आपकी हदीस की क्लास 1 मिनट में शुरू होगी, वहाँ पर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। रिकॉर्डिंग को आप यहाँ पर बंद कर दें तो उसके लिए अलग